नमस्कार भारत, तारीख 29 सितंबर, दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में आज सुषमा स्वराज पर निगाहें, क्या मुद्दा उठाएंगी भारतीय विदेश मंत्री?
भारतीय विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बारे में भी जिक्र कर सकती हैं।
कितना सही है हिंदुओं की सोच आक्रामक होने का दावा, विवेचना में राजेश जोशी की पड़ताल।
दुनिया में जब इस्लाम के जो आतंक है उसकी पराजय सामने दिखाई दे रही है, ईसाइयत का जो भोगवाद है वो पराजित होता दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में भारत फिर से दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
और भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता एशिया कप, आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को 3 विकेट से दी मात।
आखिरी गेंद 1 रन और बन गया 1 रन, इंडिया आर द चैंपियंस।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नामित जज ब्रेट कैवेना की नियुक्ति पर सीनेट में मतदान 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। इस दौरान एफबीआई उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी। इसी बीच अमरीकी सीनेट की न्यायिक समिति ने ब्रेट कैवेना के नामांकन को मंजूरी दे दी है। समिति के 11 रिपब्लिक सदस्यों ने उनके समर्थन में वोट किया, जबकि 10 डेमोक्रेट सदस्यों ने उनके विरोध में मतदान किया। समिति का कहना है कि जांच मौजूदा ठोस आरोपों तक ही सीमित रहेगी। कैवेना पर आरोप लगाने वाली क्रिस्टीन ब्लासीफोर्ड के वकील ने जांच का स्वागत किया है। कैवेना सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। वहीं सीनेट में मतदान टालने की मांग करते हुए रिपब्लिकन सीनेटर जेफ फ्लेक ने कहा,
मुझे लगता है कि एफबीआई को जांच करने के लिए समय देने के लिए सीनेट में मतदान को अधिकतम 1 सप्ताह के लिए टालना सही है।
एफबीआई की जांच मौजूदा आरोपों तक ही सीमित रहनी चाहिए और जांच 1 सप्ताह में ही पूरी हो जानी चाहिए। फेसबुक का कहना है कि एक हैकिंग हमले की वजह से करीब 5 करोड़ अकाउंट प्रभावित हुए हैं। हैकर फेसबुक के कोड की एक खामी का फायदा उठाने में कामयाब रहे और लोगों के अकाउंट में सेंध मार दी। कंपनी का कहना है कि इस साइबर हमले की जांच अभी शुरू की गई है और ये पता नहीं चल सका है कि इसके पीछे कौन है या ये हमले कहां से किए गए। अभी ये भी पता नहीं चला है कि हैकरों ने किस तरह की जानकारियां चुराई हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अधिकारिक जानकारी देते हुए बताया,
So far, we haven't seen that the access tokens were used to access private...
अभी तक हम ये नहीं देख पाए हैं कि एक्सेस टोकन का इस्तेमाल निजी संदेशों को पढ़ने या अकाउंट पर कुछ पोस्ट करने के लिए किया गया हो, लेकिन ये शुरुआती आंकलन है और चीजें बदल सकती हैं। हम ये जानते हैं कि हमलावरों ने प्रोफाइल के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एपीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमलावर अकाउंट को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते थे जैसे कि अकाउंट के मालिक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारी जांच चल रही है और हम ये पता लगाएंगे कि इन खातों को किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है और क्या क्या जानकारियाँ यहाँ से ली गई हैं। ये थे मार्क जकरबर्ग के शब्द। अमरीकी विदेश विभाग का कहना है कि वो दक्षिणी इराकी शहर बसरा में अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थिरता की वजह से बंद करने जा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक कुछ आपातकालीन कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों से दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया गया है। पोम्पियो ने कहा कि यदि ईरान के समर्थक बलों ने अमरीकी नागरिकों या प्रतिष्ठानों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो सीधे ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। अमरीका ईरान पर अपने दूतावास पर रॉकेट हमले रोकने में नाकाम रहने के आरोप भी लगा चुका है। बसरा में इस समय हालात अस्थिर हो रहे हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित होने की वजह से नागरिक सड़कों पर हैं और प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी ने बसरा के सैन्य अभियान प्रमुख को निलंबित कर दिया है। गजा से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में कम से कम 7 फलस्तीनियों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें एक की उम्र 12 और दूसरे की 14 साल है। फलस्तीनी कई महीनों से हर शुक्रवार को इजरायली सीमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने पूर्वजों के घरों में वापस लौटने की मांग कर रहे हैं। ये इलाका अब इजरायल के नियंत्रण में है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि सीमा पर तैनात उसके सैनिकों पर पत्थरबाजी की गई और ग्रेनेड दागे गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव।
आखिरी गेंद एक रन और बन गया एक रन। केदार जाधव इंडिया 2018 यूनिमनी एशिया कप इंडिया।
भारत में आधी रात का वक्त बीत चुका था लेकिन तमाम क्रिकेट फैंस टीवी सेट पर आंखें लगाए हुए थे। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जहां कल भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था, वहां भी शायद ही ऐसा कोई दर्शक था जो अपनी सीट छोड़कर खड़ा न हो गया हो। आखिरी गेंद तक चले फाइनल मैच का रोमांच ही कुछ ऐसा था। भारतीय टीम फेवरेट थी लेकिन बांग्लादेश ने 223 रन के मामूली दिखने वाले लक्ष्य तक पहुंचने से पहले भारतीय बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। भारत ने मैच की आखिरी गेंद पर 3 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच पर हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन नमस्कार भारत में सबसे पहले बात संयुक्त राष्ट्र के सालाना महाधिवेशन की। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में हैं। आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम को वो महाधिवेशन को संबोधित करेंगी। भारतीय विदेश मंत्री इस मंच से क्या मुद्दे उठा सकती हैं, बता रहे हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज स्थानीय समय के अनुसार करीब 10 बजे सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें महाधिवेशन को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि सुषमा स्वराज अपने भाषण में आतंकवाद के मुद्दे पर ज्यादा जोर देंगी। अन्य अहम मुद्दों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के बारे में भारत की मांग भी दोहराए जाने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देश सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से सुधार होने चाहिए। सुषमा स्वराज भारत द्वारा देश में गरीबी कम किए जाने और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के बारे में भी बात कर सकती हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बारे में भी जिक्र कर सकती हैं। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद से भारतीय विदेश मंत्री ने 20 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की, जिनमें जापान, ऑस्ट्रिया, नेपाल, सीरिया और ईरान शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने सार्क, ब्रिक्स और इप्सा जैसे कई बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में सुषमा स्वराज ने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा आतंकवाद पर भी चर्चा की और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया और साथ मिलकर आतंकी गुटों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने की बात भी की। इसी तरह सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और बगैर शांति और सुरक्षा के क्षेत्रीय सहयोग मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पिछले 5 दिनों से न्यूयॉर्क में मौजूद थे लेकिन भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की न तो कोई मुलाकात तय थी और न ही कोई मुलाकात हुई। यहां तक कि सार्क की बैठक में एक ही हॉल में बैठने के बावजूद दोनों देशों के मंत्री एक दूसरे से कतराते नजर आए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी आज ही शाम के सेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद यह की जा रही है कि वो कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगली खबर भारत के राज्य झारखंड से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को लाभ पहुंचाने वाली किसी सरकारी स्कीम के लिए आधार जरूरी नहीं है। ये फैसला आने के ठीक एक साल पहले झारखंड के सिमडेगा में 11 साल की संतोषी की भूख से मौत हो गई थी। उनका आधार कार्ड राशन वितरक की मशीन से जुड़ा हुआ नहीं था। एक साल बाद संतोषी के परिवार का क्या हाल है, ये जानने पहुंचे हमारे साथी रवि प्रकाश।
जब मैं कोयली देवी के घर पहुंचा तो वे अपने 3 साल के बेटे प्रकाश को साग भात खिला चुकी थीं। अब एक साल बाद भी वह नहीं भूल पाती कि भूख से तड़पती उनकी बेटी भात भात की रट लगाते हुए मर गई थी। घर में राशन नहीं होने के कारण वे तब संतोषी को भात नहीं खिला सकी थी। उस वक्त उन्हें 8 महीने से राशन इसलिए नहीं मिल सका था क्योंकि उनका आधार कार्ड राशन डीलर के POS मशीन से लिंक्ड नहीं हो रहा था। झारखंड सरकार ने तब ऐसे तमाम कार्ड रद्द कर दिए थे। संतोषी की मां कोयली देवी ने BBC से कहा कि अगर आधार कार्ड के बगैर राशन मिल रहा होता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती।
टाने के लगे थे गवर्नमेंट के सेक्शन में मुर्ख सोटो थे सन मुखे भूखे लागत है एकदम छोटबोटी और मुर्ख भारी पसेना छूटलक छुआ जखन जान जलक से अखन नहाए धोए के मोर बेटी फेरे से ही के आए रहे।
संतोषी की मौत के एक साल बाद यह चर्चा और सामयिक इसलिए हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुनाया है। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता रीतिका खेड़ा, सिराज दत्ता और स्वाति नारायण द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल के दौरान भारत में 56 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। इनमें से 42 मौतें साल 2017-18 के दौरान हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 25 मौतों के लिए किसी न किसी रूप में आधार कार्ड जिम्मेवार था, जबकि 18 मौतें सीधे तौर पर आधार कार्ड के कारण हुई। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम की सदस्य सिराज दत्ता ने बीबीसी से कहा,
बेसिकली ये न्यूज रिपोर्ट पे आधारित है। इनमें से पिछले 4 साल में लगातार कुछ कुछ रिपोर्ट आते रहे हैं जो हम लोग कंपाइल करते रहे हैं, और फिर इसमें से कई जगह खास करके झारखंड के केसेस में कैंपेन की ओर से और कई अन्य साथी भी फैक्ट फाइंडिंग किए हैं। कुछ केसेस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। जितने भी परिवार थे, ये सभी परिवार काफी कमजोर परिवार थे जो कि आधार या पेंशन पे, राशन या पेंशन पे उनकी निर्भरता थी।
झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन मौतों के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं।
देखिए, झारखंड में जो लोगों की मौत हुई, अगर आप जब रघुवर सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया तो उन्होंने अखबारों में विज्ञापन छपवाया, 11.5 लाख करीब राशन कार्ड को उन्होंने रद्द कर दिया कि आधार से उनका लिंक नहीं हुआ। उन्होंने ये तर्क दिया कि ये फर्जी है। हम लोगों ने पूछा था, भाई फर्जी आप किस आधार पर उसको मानते हैं? आपने किसी एजेंसी से जांच कराया क्या? अब इस कारण से क्या हो गया कि लोग यहाँ आधा दर्जन से अधिक लोग भूखे मर गए।
झारखंड सरकार ने भूख से मौत को अभी तक परिभाषित नहीं किया है। मशहूर साहित्यकार विमल मित्र ने अपने चर्चित उपन्यास खरीदी कौड़ियों के मोल में लिखा भी था कि अगर एक आदमी भूखों मरता है तो देश भर के लोग अपराधी हुए। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए सिमडेगा में।
रवि प्रकाश ने इस रिपोर्ट पर सरकारी अधिकारियों का पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनका पक्ष सामने आएगा तो हम उसकी भी जानकारी देंगे। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या हैं। दिलनवाज तैयार हैं अखबारों के साथ। जी दिलनवाज।
जी, सुप्रीम कोर्ट आजकल एक के बाद एक कई अहम फैसले दे रहा है, और कल दिए गए एक अहम फैसले में केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई, और इसी पर दैनिक भास्कर लिखता है 800 साल बाद देवी प्रवेश। वहीं अमर उजाला लिखता है हर महिला के लिए खुले सबरीमाला मंदिर के द्वार। इसके अलावा एक और खबर है, भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, उसके प्रमुख के शर्मा ने दावा किया है कि भारत के जिस जवान की हत्या हुई थी उसका पाकिस्तान से बदला ले लिया गया है। और इसी पर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुजफ्फरनगर में दिया गया गृहमंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। तो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा भारत ने पाकिस्तान में के भीतर जाकर किया था, 2 साल उसके होने वाले हैं, और अब इस तरीके के बयान से संकेत ये मिल रहे हैं
जी, उसका जश्न एक सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से चल रहा है।
जी, और उसी में ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि ऐसी ही कोई और कार्रवाई शायद की गई है
जिसे सरकार आगे जानकारी देगी।
जी बिल्कुल। और भीमा कोरेगांव मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ये खबर भी आज अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है। इंडोनेशिया में कल एक बड़ा भूकंप आया था, उससे जुड़ी खबरें आज अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। और एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत, जिसका हमने जिक्र किया, लगभग सभी अखबारों में इस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। और जो
तो क्या मैच का रिजल्ट भी दे दिया है अखबारों ने?
जी जी बिल्कुल, बांग्लादेश को हराकर 7वीं बार बना एशियाई चैंपियन भारत, ये दैनिक जागरण लिख रहा है। और जिस खबर का मैंने अभी जिक्र किया था, 5 शहरी नक्सलियों को कोर्ट से झटका, हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन दैनिक जागरण अखबार ने जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उन्हें शहरी नक्सली कहा है। और ये शहरी नक्सली, इन लोगों के लिए शब्द का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अंग्रेजी मीडिया अर्बन नक्सलाइट कह रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT को जाँच देने से इनकार कर दिया है और गिरफ्तारी को सही कहा है। ये अलग अलग अखबारों में
नजरबंद जो इन्हें किया गया है।
जी जी, अलग अलग तरीके से ये खबर आज के अलग अलग अखबारों में है। इसके अलावा CBI में जो नंबर 1 और नंबर 2 के अधिकारी हैं उनके बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें एक अधिकारी की फरारी की चर्चा इंडियन एक्सप्रेस ने आज अपने पहले पन्ने पर की।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए।
BBC इंडिया बोल।
क्या रफाल सौदा नरेंद्र मोदी सरकार का बोफोर्स बनता जा रहा है? या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 29 सितंबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी शरीक हो इंडिया बोल में और रखें अपनी राय। और अब वक्त विवेचना का। क्या भारत में हिंदुओं की सोच बदल रही है? क्या हिंदुओं में 6 दिसंबर 1992 के पहले हीन भावना थी? क्या हिंदुस्तान में लिंचिंग का विरोध करने वाले गो तस्करों के हमले के वक्त वाकई चुप्पी साधे रहते हैं? और क्या आरएसएस अपने कैडर को उत्साहित करने के साथ अपनी छवि बदलने की भी कोशिश कर रहा है? सुनिए बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी की इन सवालों पर पड़ताल।
हम बजरंग दल के चीते
वादा करते हैं आतंकवादी बाबर हुमायूं औरंगजेब का नामो निशान मिटा देंगे। जिसके दिल में श्री राम के लिए नफरत होगी इस धरती से वो इंसान मिटा देंगे। जय श्री राम।
ये तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलोर की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे बजरंग दल के गुंडे एक मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं।
हरियाणा के हिसार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह गुंडागर्दी की है।
पर नमक हरामी अपने ही देश से है कर जाते, अब ऐसा को चुन चुन कर मारा जाएगा। श्री राम कसम टुकड़ों में काटा जाएगा।
गाय का क्यों? किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी
चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने कोई छोटी चुनौती नहीं थी। दिल्ली में 3 दिन तक चले सम्मेलन में उन्होंने दुनिया को समझाने की कोशिश की कि संघ कानून और संविधान का पालन करने वाला एक जिम्मेदार संगठन है। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना था कि उनके बयान से संघ के एजेंडे को सड़कों पर लागू करने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता हताश न हो। इसीलिए उन्होंने हैरानी जताई कि लिंचिंग का एक तरफा विरोध किया जाता है।
अब लिंचिंग पर आवाज करते हैं और गौ तस्कर हमला करते और हिंसा करते उस पर आवाज नहीं होती, ये दोगली प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए।
भागवत ने एक तरह से लिंचिंग का विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो तब कुछ नहीं बोलते जब गो तस्कर हमला करते हैं। इसे अंग्रेजी में व्हाटअबाउटरी कहा जाता है, यानी जघन्य अपराध का विरोध करने वालों को ही कटघरे में खड़े करना। पर इससे भी ज्यादा भागवत के ये शब्द उन तमाम गोरक्षकों के लिए आशीर्वाद की तरह थे जो गाय की रक्षा के नाम पर जान लेने में नहीं हिचकते। अठारहवीं शताब्दी के अमेरिका में गोरे यूरोपियन लोगों की भीड़ अफ्रीकी मूल के काले लोगों को बिना मुकदमे सुनवाई के पीट पीट कर या फांसी पर लटका कर मार डालती थी। इसको लिंचिंग कहा गया। हिंदी भाषा में लिंचिंग शब्द का प्रयोग पिछले 3-4 साल में धड़ल्ले से होने लगा है, क्योंकि लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और गोरक्षा के नाम पर हुई लिंचिंग के ज्यादातर शिकार मुसलमान रहे हैं। सवाल है कि हिंदू इतना गुस्से में क्यों है? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार इसका कारण बताते हैं।
अयोध्या की लड़ाई में ये प्रश्न तीखे होकर उभरे और जिस दिन वो ढांचा गिरा, और मैं मानता हूँ कि वैसे ना गिरता तो भी ठीक होता, पर उस दिन से हिंदुओं की हीन भावना पर एक बड़ा अंतर पड़ा। अब हिंदू आत्मविश्वस्त होकर के अपने जीवन को, अपने मूल्यों को एजर्ट कर रहा है, ये अंतर मैं देखता हूँ और ये अंतर हिंदुओं के सब वर्गों में देखता हूँ।
संघ की राजनीति की बारीक जानकारी रखने वाली पत्रकार राधिका रामाथेशन भी मानती हैं कि इस गुस्से का सबसे उग्र रूप अयोध्या आंदोलन के दौरान सामने आया था।
उस समय ये क्रोध हमें जरूर देखने को मिला और जो आवाजें निकलती थी उस समय यही कहते थे कि ये दबा कुचला समाज है, ये गुलामी के शिकार हैं कई कई सदियों से, तो अभी हमें एक चैनल सा मिल गया है, एक आउटलेट सा मिल गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद पे जो आक्रमण हो रहा है या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जो विवादित स्थल जो भी कहिए, ये एक तरह से हमारा गुस्सा प्रकट हो रहा है।
संघ परिवार और उससे जुड़े किसी भी संगठन के लोगों से बात करें तो लगभग एक जैसा इतिहास बोध सामने आता है। वो मानते हैं कि हिंदुओं के साथ पिछले 1000 साल से ज्यादतियां होती आई हैं। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार,
मैं इसको ब्रिटिश काल को भी और मुगल काल को भी कहता हूँ, क्योंकि मुगल काल की आक्रांता तो बाहर से आए थे, वो एक विदेशी संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। इस संदर्भ में मैंने कहा कि 1000 साल की गुलामी।
हाँ, लेकिन मुगल तो 1526 में आए बाबर के साथ, 1000 कैसे हुआ?
उसके पहले जो शकों के, हूणों के और बाकी आक्रमण हुए, तो मेरी समझ में ये सब संघर्ष लगभग 1000 साल चला।
इतिहास बताता है कि शक, हूण और कुषाण जैसी जातियां लगभग 2000 साल पहले आई थीं, पर हिंदुत्ववादी संगठनों की सोच ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा भावनाओं पर टिकी होती है। बजरंग दल के अखिल भारतीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी की नजर में बामियान की बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा जाना भी हिंदुओं के साथ ज्यादती का उदाहरण है।
712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तब से ये भावना जो है हिंदुओं के मन में है, भारत माता का विभाजन हुआ, हम भूल जाएंगे क्या? क्या लाहौर, क्या ननकाना, क्या तक्षशिला, क्या बामियान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, क्या ढाका की माँ ढाकेश्वरी, ये भूल जाएंगे हम?
आरएसएस के इतिहास बोध पर लगातार गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जिस मुगल राज में हिंदुओं को दबाए जाने की बात संघ के अधिकारी कहते हैं, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम उसे मुगल और ऊंची जातियों का राज बताते हैं।
मुगल राज जो था वो बेसिकली हिंदू ऊंची जाति राज प्लस मुगल राज था। हिमायूं के बाद कोई भी मुगल राजा मुसलमान मां से नहीं है। औरंगजेब कभी भी बादशाह बनने के बाद जंग लड़ने नहीं गया। औरंगजेब की जंग लड़ते थे जयसिंह टू, चाहे शिवाजी के खिलाफ हो, चाहे पंजाब हो, बाबाओं के खिलाफ हो, गुरुओं के खिलाफ हो।
वो कहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति संघ परिवार का नजरिया उच्च वर्णीय जातिवादी संस्कार की उपज है। उनके मुताबिक इसीलिए संघ ने आजादी के बाद मनुस्मृति को भारत के संविधान का दर्जा देने की बात कही थी।
कोड मनु के जो आरएसएस चाहती है कि लागू होंगे, जरा सा पढ़ना चाहता हूँ। दलितों के बारे में 91 श्लोक है, भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्गों के निर्विकार भाव से सेवा करना।
मेरा नाम अमृत शुक्ला, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश।
मेरा नाम शुभम कुमार मिश्र, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश।
मेरा नाम देव अवस्थी, जिला फरुखाबाद।
मेरा नाम अनमोल दुबे, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
मेरा नाम हर्षित पांडे, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
मेरा नाम नितिन पांडे, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
मेरा नाम कुंदन उपाध्याय, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।
मेरा नाम आदित्य कौशिक, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।
मेरा नाम सुषमा शुक्ला, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
आरएसएस की विश्व दृष्टि में ब्राह्मण संस्कार कितने जरूरी हैं, ये जानने के लिए मैं दिल्ली के नेहरू नगर में सनातन धर्म मंदिर पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद इन सभी ब्राह्मण बालकों को वेद पाठ और ब्राह्मण संस्कार की शिक्षा देती है। ये 10 किशोर सनातन धर्म मंदिर में बैठ करके वेद पाठ कर रहे हैं। बाहर से देखें तो लाजपत नगर का ये इलाका है, दिल्ली में फ्लाईओवर है जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर आके ऐसा लगता है कि आप वैदिक युग में पहुंच गए हैं। इन वेद पाठी ब्राह्मण बालकों में से एक रामचंद्र पांडे की सामाजिक समझ संघ से संबंधित इसी गुरुकुल में विकसित हो रही है।
यहाँ तो सब दोस्त हैं, ब्राह्मण ही हैं।
आप ब्राह्मण हैं तो जो दलित हो उसके साथ एक थाली में खाना खा सकते हैं?
नहीं नहीं नहीं, क्यों? नहीं खा सकते हम, अलग उसके साथ बैठ के खा सकते हैं, वो बात अलग है, वो बात दूसरी हो जाती, लेकिन अभी जैसे अपने धर्म में आए तो नहीं खा सकते हैं।
तो दलित भी तो हिंदू है?
हाँ, दलित हिंदू है तो कह तो रहा हूँ, उसके साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जैसे अपना एक धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वेदों ने, मतलब भगवान ने सबको एक अलग अलग काम बांटा है। ब्राह्मण का है बोलना सबको, मतलब सुधारना, सब चीज़ करना। क्षत्रिय का है रक्षा करना, वैश्य का है सबका पालन पोषण करना, और शूद्र का है सबकी सेवा करना।
इन बच्चों को हिंदू संस्कार तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ सेना के प्रति सम्मान का भाव भी जगाया जाता है।
हमारा एक ही लक्ष्य है, आर्मी सेना, सीमा की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे।
तो वहाँ तो सेना में तो सब लोग होते हैं, जैसे दूसरी जातियों के लोग भी होंगे?
सबको अलग अलग काम दिया जाता है ना, पंडितों को अलग, दूसरी जातियों को अलग।
सीमा पर लड़ने का काम तो सबको एक जैसा होता है, तो जो दलित है वो भी आप साथ में बैठ के खाना पड़ेगा उसके।
तो कोई नहीं तो हिंदू ही तो है, तो क्या हो गया?
अगर कोई मुसलमान होगा
तो उसके साथ नहीं खा सकते, क्योंकि हमसे वो अलग जाति है, अलग हम मुगल, वो मांस मच्छी खाते हैं।
ये बच्चे शास्त्र की शिक्षा तो लेते ही हैं, साथ ही उन्हें शस्त्र का महत्व भी बताया जाता है। आचार्य समीर,
अहिंसा परमो धर्मः ये कहा गया है, पर उसके पहले जो लाइन है उसको लोग नहीं बताते, अर्थात धर्म के लिए अगर हिंसा करना पड़ा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए कोई गलत नहीं है कि अगर बजरंग दल के लोग या एपी के लोग अगर अहिंसा करते हैं, कहीं पर कुछ ऐसा गलत करते तो उसको गलत नहीं कहना चाहिए।
लाजपत नगर गुरुकुल की तरह ही देश के अलग अलग हिस्सों में संघ के कई प्रकल्प सक्रिय हैं। इसी का नतीजा है कि कुछ साल पहले जहां इक्का दुक्का कांवड़िए सड़कों पर नजर आते थे, आज हजारों हजार की संख्या में वो हर सावन में उमड़ पड़ते हैं। बजरंग दल के संयोजक सोहन सिंह सोलंकी इसे युवकों के आत्मविश्वास के तौर पर देखते हैं।
लाखों की संख्या में जो युवा सड़क पर आ रहा है, भगवा रंग का झंडा हाथ में लेता जरूर है, वो भगवा रंग का झंडा उसकी भावनाओं का प्रकटीकरण है, वो उसके अंदर था, लेकिन उसको अब लगता है कि हाँ दुनिया में जब इस्लाम के जो आतंक है उसकी पराजय सामने दिखाई दे रही है, दुनिया में ईसाइयत का जो भोगवाद है वो पराजित होता दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में भारत फिर से दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, भारत फिर से महाशक्ति बन सकता है और मैं उसमें भूमिका निभा सकता हूं, ये जो उसकी भावना है उसका प्रकटीकरण के रूप में वो सड़क पर आता है।
अब से 7 साल बाद 2025 में आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। पिछले 9 दशकों से संघ चुपचाप अपना काम करता आ रहा है, कभी सत्ता के समर्थन से और कभी उससे टकराकर। अपने उद्देश्य को हासिल करने में उसने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में कभी कोई हिचक नहीं दिखाई है, और अब उसे लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य को हासिल करने के बहुत पास पहुँच चुका है।
राजेश जोशी की विवेचना पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब एशिया कप फाइनल पर आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
भारत को आखिरी ओवर में 6 और आखिरी गेंद पर 1 रन बनाना था। फाइनल मैच शुरू होने से पहले इसके एक तरफा होने का अनुमान जाहिर कर रहे विश्लेषकों के लिए ये चौंकाने वाली स्थिति थी। भारत को आखिरी गेंद पर जरूरी 1 रन लेग बाई से मिला और एशिया कप रिकॉर्ड 7वीं बार भारत के हाथ आ गया। बांग्लादेश की टीम 3 विकेट से मैच हार गई, लेकिन अपने जुझारू जज्बे से दिल जीतने में कामयाब रही। 223 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिखर धवन और अंबाती रायडू सस्ते में आउट हो गए। लय में दिख रहे कप्तान रोहित शर्मा 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाला और 54 रन जोड़े। भारत ने धोनी और कार्तिक के विकेट कम अंतराल में गंवाए और केदार जाधव को चोटिल होने की वजह से बाहर जाना पड़ा। मुश्किल वक्त में रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार ने 45 रन जोड़े। इन दोनों के आउट होने के बाद जीत दिलाने की जिम्मेदारी अनफिट जाधव ने उठाई। इसके पहले बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने शतकीय पारी खेली। बांग्लादेश का कोई और बल्लेबाज दम नहीं दिखा पाया। दास को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। शिखर धवन मैन ऑफ द सीरीज रहे।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नामित जज ब्रेट कैवेनॉ की नियुक्ति पर सीनेट में मतदान 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। इस दौरान FBI उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी। फेसबुक का कहना है कि हैकिंग हमले की वजह से करीब 5 करोड़ अकाउंट प्रभावित हुए हैं। हैकर फेसबुक के कोड की एक खामी का फायदा उठाने में कामयाब रहे और लोगों के अकाउंट में सेंध मार दी। अमरीकी विदेश विभाग का कहना है कि वो दक्षिणी इराकी शहर बसरा में अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थिरता की वजह से बंद करने जा रहा है। गजा से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 7 फलस्तीनियों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास आए भूकंप से पैदा हुई शक्तिशाली सुनामी 3-4 मीटर ऊंची लहरों के साथ तटों से टकराई है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। आज होगा इंडिया बोल। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।